नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम का विषय एक बार आपके लिए फिर से दोहरा देता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के रामदास कॉलेज में जिस तरह से हाल के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वाम छात्र संगठन के बीच में जिस तरह से मारपीट हुई, सवाल ये है कि क्या आज ये विश्वविद्यालय यानी कि जो शैक्षणिक संस्थान है, क्या लड़ाई के अड्डे बन गए हैं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अतुल कुमार अंजान, जो कि छात्र नेता रह चुके हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से 6 साल तक अध्यक्ष रह चुके हैं, फिलहाल जिला मऊ उत्तर प्रदेश से इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, अतुल कुमार अंजान साहब। अंजान जी, विश्वविद्यालय को कहते हैं कि भाई राजनीति की नर्सरी है, यहाँ पर राजनीति का पाठ पढ़ाया जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना?
मोहनलाल शर्मा जी, आपको सबसे पहले नमस्कार, आपके साथ श्रोताओं को नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रश्न अभी आपने उठाया है, इतना सटीक सवाल है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के जितने बड़े बड़े नेता थे, वो सब किसी न किसी वक्त विश्वविद्यालय छात्र संघों के या छात्र संघों के अध्यक्ष थे। आपको बताऊं, सबसे पुराना संगठन भारत की आजादी की लड़ाई में जिसे सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को संगठित किया, वो था ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। 11-12 अगस्त 1936 को लखनऊ में उसका सम्मेलन हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका उद्घाटन किया था और मोहम्मद अली जिन्ना ने उसकी अध्यक्षता की थी। वो पहला और आखिरी मौका था जब किसी सार्वजनिक क्षेत्र पे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना एक साथ थे। लेकिन उस समय के दौर में बड़े बड़े विद्यार्थी नेता जो थे, उन्होंने राष्ट्रीय आजादी के संघर्षों में विचारों के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, नए विचारों के साथ, देश में समानता के साथ, स्वतंत्रता के लिए लोगों में जागरूकता, युवाओं में जागरूकता, विद्यार्थियों को संगठित करने का काम किया था। और एक वैचारिक चेतना, एक नए समाज और भारत का संविधान कैसा हो, इसकी भी पृष्ठभूमि तय होती थी। विद्यालय सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र नहीं थे, नए समाज को करने के औजार थे।
राजनीति की नर्सरी थे वो, और राजनीति की नर्सरी आज भी हम उन्हें कह सकते हैं। मेरे साथ दूसरी टेलीफोन लाइन पर शामिल हो चुके हैं संदीप महापात्रा, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सिर्फ एक ही बार यहाँ के अध्यक्ष पद पर जिसको कहते हैं कि सत्ता हासिल की, और वामपंथ के का जो गढ़ है उसमें सेंध लगाने वाले अध्यक्ष एकमात्र अध्यक्ष रहे हैं संदीप महापात्रा साहब। संदीप जी, जिस तरह से आजकल जेएनयू में ये जो लड़ाई का अखाड़ा बन गया है, उसके बाद जेएनयू से बात आगे चली तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में यही बात आई, भाई ये राजनीति के अखाड़े कब से बन गई, ये तो राजनीतिक सिद्धांतों के विचारों की नर्सरी इन्हें कहना चाहिए ना?
नहीं, आप सही कह रहे हैं कि ये राजनीतिक सिद्धांतों की नर्सरी है, लेकिन बात यह है कि आज के समय में विडंबना यही है कि सिद्धांत कुछ रहे नहीं। लोगों को जिस तरह की छात्र राजनीति होना चाहिए, कुछ एक छात्र संगठन है, उनको आजकल टीआरपी की राजनीति रास आने लगी है। तो इस तरह से कुछ करेंगे कंट्रोवर्शियल, जिसके कारण उनको मीडिया में अटेंशन मिले, कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, कुछ कंट्रोवर्सी में वो लोग पढ़े, कुछ कंट्रोवर्सी और बने।
और इसमें एबीवीपी काफी आगे है?
नहीं, एबीवीपी कतई नहीं है। एबीवीपी ने जो आज के समय में हम जो बात कर रहे हैं, एबीवीपी ने एक प्रदर्शन किया रामजस कॉलेज में, क्योंकि जिस व्यक्ति को वहां पे बुलाया गया था उस व्यक्ति के बारे में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में और आम कार्यकर्ताओं में, आम स्टूडेंट्स में ये राय है कि भाई एक ऐसे व्यक्ति है जिनके खिलाफ एक देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, और ऐसे व्यक्तियों को बुलाने के औचित्य क्या है, उसके विरोध प्रदर्शन हुआ।
लेकिन राजनीति में, मतलब विश्वविद्यालयों में जब सेमिनार होते हैं, हालांकि रामजस कॉलेज में सेमिनार का मुद्दा कुछ और था और उसमें उस विषय से इस विषय का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन छात्र आंदोलन में, छात्रों की राजनीति में, विश्वविद्यालयों में तमाम सेमिनार होते हैं जिसमें हर विचारधारा के लोग आके बात रखते हैं, तो विचार के आधार पर किसी का विरोध करना, मारपीट पर उतर आना, क्या सही बात है?
नहीं, देखिए, जहां तक मारपीट की बात है, किस तरह से मारपीट शुरू हुई है, एक जांच की विषय है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, एक तरफा रिपोर्टिंग हो रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते और अभी भी वहां पे जो कार्यकर्ता है उनके साथ मेरे अभी भी संबंध है, मुझे जो ज्ञात हुआ है उसमें यही है कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, लोगों को उकसाया गया, वहां पे नारेबाजी के लिए पथराव वगैरह दूसरे पक्ष से शुरू हुआ और ये बात आगे बढ़ी। मैं जहां तक मैं मानता हूं हिंसा की कोई स्थान नहीं है, वो चाहे किसी भी प्रकार की राजनीति हो, छात्र राजनीति हो या देश की राजनीति हो। लेकिन जो मूलभूत बात है कि आप अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आपकी बात रखी जाए वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अगर किसी और यूनिवर्सिटी में कोई और व्यक्ति आए, जैसे तमाम तरह की मैं बातें कर सकता हूँ कि जेएनयू में जैसे यहाँ पे अभी पिछले ही साल बाबा रामदेव को आने नहीं दिया गया, वो यहाँ पे आके बात करना चाहते थे, वहाँ यहाँ पे आने नहीं दिया गया, क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हनन नहीं है?
इस तरह के
बातें हुई हैं। जैसे जेएनयू के अंदर ही जब उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आते हैं उनको ब्लैक फ्लैग दिखाया जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे वो जब आए उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है एक तरह से। तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के आप कहां तक लेके जाना चाहते हैं
जी?
ये और आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या बाकी लोगों का भी है?
जी मैं चलूंगा अतुल कुमार अंजान से बात करूंगा, लेकिन पहले यहां पर मैं कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहा हूं। जी नाम बताएं और कहां से बोल रहे हैं? हेलो,
हाँ मेरा नाम सुशील नारायण है, बिलाड़ा जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ।
सुशील नारायण जी अपनी बात रखें आप।
हाँ, ये जो आज का विषय रखा है ये वामपंथ और दक्षिणपंथ का अड्डा नहीं होके बल्कि राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रवादियों की जंग है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कोई अलगावादी सोच को समाज में बढ़ावा देता है तो उसका विरोध तो स्वाभाविक है, और ऐसी मानसिकता को तुरंत कहने से रोकना भी बहुत जरूरी है। जैसा कन्हैया के केस में जो हाई कोर्ट में जो उन्होंने फैसला सुनाया है उन्होंने बहुत कड़ी फटकार लगाई है कि ये इस प्रकार की जो मानसिकता है इसके ऊपर तुरंत कुठाराघात होना चाहिए। और क्योंकि कुछ लोग जल्दी ऐसी बातों में घुबरा भी हो जाते हैं, मेरा तो स्पष्ट मत है कि कॉलेजों में छात्रों के बीच चर्चा या कार्यक्रम ऐसे लोगों के कराए जाने चाहिए जो राष्ट्र प्रति छात्रों की जिम्मेदारी को और प्रगाढ़ करते हो, न कि खालिद और कन्हैया जैसे लोगों को जो आजादी के नाम पर राष्ट्रविरोधी फरमाए भड़काते हैं।
जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अतुल कुमार अंजान साहब, आपके पास वापस आ रहा हूँ। इन्होंने एक बात कही और बहुत मुद्दे की बात कही कि ये जो लड़ाई है ना वास्तविकता में वैचारिक नहीं है बल्कि राष्ट्र विरोध और राष्ट्रहित की लड़ाई हो गई है। और जो संदीप महापात्रा जो बात कर रहे थे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर अगर मनमोहन सिंह को काले झंडे दिखाए जाते हैं जो कि प्रधानमंत्री थे, उसके अलावा जो बाकी उदाहरण वो दे रहे हैं कि रामदेव को ना बुलाया जाना, ये सब भी तो उसी तरह की चीज़ें हैं ना। तो कुल मिलाकर बात राष्ट्र विरोध बनाम राष्ट्रहित की है यहाँ पर।
ये कौन तय करेगा कि कौन राष्ट्रवादी है कौन राष्ट्र विरोधी है? मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हूं और कार्यकर्ता हूं, सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग और एबीवीपी के लोग मुझे राष्ट्र विरोधी कहते हैं। इनसे पूछिए, ये लोग जो लोग मुझको राष्ट्र विरोधी कहते हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी एक जगह कहा कि अतुल कुमार अंजान राष्ट्र विरोधी, इनके नेता कहते हैं। मेरे पिताजी आजादी की लड़ाई में 18 साल काकोरी ट्रेन डकैती में जेल में रहे, मेरी माता जी जेल में रही, मेरे परपितामह बस्ती के राजा थे वीर कुंवर सिंह के साथ 1857 की लड़ाई में हथियार लेकर के अंग्रेजों को काटते हुए भोपाल तक गए, जिसके चलते उनकी बस्ती की रियासत चली गई, बच करके अपने साथियों के साथ कामरूप कामाख्या के मंदिर में शरण ली। तो हम सब तो लुट गए, हमारे पिताजी आजाद, और मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मेरे पिताजी बटुकेश्वर दत्त के दोस्त थे, जेल में 18 साल 1948 में रिलीज हुए। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि मैं बटुकेश्वर दत्त जी के कंधों पर खेला हुआ हूँ बचपन में। तो मैं राष्ट्र विरोधी हो गया जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक दिन हिस्सा नहीं लिया। मैं पूछ रहा हूँ वो कैसे राष्ट्र समर्थक हो गए, कैसे सबसे बड़े राष्ट्रवादी हो गए? मैं पूछ रहा हूँ गोलवलकर जी क्यों नहीं जेल गए राष्ट्रीय आजादी में? मैं पूछ रहा हूँ कि अडवाणी जी क्यों नहीं गए? ये राष्ट्र, और जहां तक विचारों की स्वतंत्रता का सवाल है, जब मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में था तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को कई बार सेमिनार में बुलाता था, और आज भी आज से 6 महीने पहले तक उनसे मिलने जाना चाहता। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालयों में, जैसा आपने मोहनलाल जी कहा कि ये विचारों की नर्सरी है, यहां सीखने की जरूरत है, मैं समझता हूं कि विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए,
बहुत
जरूरी है, और आप किसी को रोके नहीं, मैं इसका समर्थक नहीं।
मैं संदीप महापात्रा के पास चल रहा हूँ। संदीप जी, बात ये आई कि ये कौन तय करेगा कि ये अमुक विचारधारा राष्ट्र विरोधी है या अमुक विचारधारा राष्ट्रहित वाली है, ये कौन तय करेगा? और क्या इसको तय करने का जो सारा जिम्मा है वो मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या फिर दक्षिणपंथी संगठनों ने ले रखा है?
नहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रहित की राष्ट्रवादी छात्र संगठन है।
सवाल वही है कि ये कौन तय करेगा कि अमुक व्यक्ति राष्ट्र विरोधी है और अमुक व्यक्ति राष्ट्र विरोधी नहीं है।
मैं आ रहा हूँ आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो ये कहता है कि भाई जेएनयू में भी लड़े हैं, डीयू में भी लड़ेंगे, आपको मार के लाश जो है समंदर में फेंकाएंगे, इस तरह के व्यक्ति को आप अगर किसी कैंपस में बुला रहे हैं, किसी परिसर में बुला रहे हैं, और जिस विषय पे आप उनको उनसे सुनना चाहते हैं उस विषय पर उनका कोई ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि उनका अगर आप देखेंगे प्रोफाइल देखेंगे तो उस तरह का है नहीं कुछ। और जहां तक राष्ट्र विरोधी कौन है और राष्ट्रभक्त कौन है वो अपने काम से पता चल जाता है। जैसे अभी बार बार अतुल कुमार अंजान जी संघ के नाम ले रहे थे, मैं आपको ये बता दूं अतुल कुमार अंजान जी AISF भले ही 1936 में आप लोगों ने स्थापना की थी और बहुत सारे लोग उसमें काम किए थे, लेकिन आज के समय में अगर आप देखेंगे कि AISF की स्थिति क्या है, उसके विपरीत अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हम बात करते हैं, आज के समय में नॉर्थ ईस्ट जो आज तक पिछड़ा हुआ एक जगह है जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है और यहाँ के जो भारत के लोग हम लोग हैं उनको उनके बारे में जानते नहीं है, पिछले 25 वर्ष से एक प्रोग्राम AVP चलाती है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स भारत के भिन्न भिन्न स्थान पे जाते हैं और स्टूडेंट्स के घर में रहते हैं ताकि राष्ट्रीय एकता बना रहे। और जहां तक राष्ट्र विरोधी है, जब Tiananmen स्क्वायर में है या फिर इस तरह की कुछ बात होती है वहां पे, बल्कि 1962 की जो लड़ाई है चाइना के समर्थन में कौन आए थे, ये वही लोग हैं जो कि राष्ट्रभक्त होने की अभी दावा कर रहे हैं, लेकिन 1962 में तो तब लोगों ने यही कहा था।
देखिए मैं 1962 की लड़ाई और मतलब उन तर्कों में नहीं जाना चाहता और
नहीं, जाने की जरूरत है मोहनलाल जी, जाने की जरूरत है,
कतई जरूरत नहीं है।
नहीं नहीं एकदम जरूरत इसलिए है कि उससे ये प्रतीत होता है कि आप राष्ट्र के साथ है या राष्ट्र के विरोध में।
भाई आप लोग जब भी इस तरह की बात करते तो 1962 भारत चीन
इतिहास के बारे में बात नहीं करेंगे,
ये जरूर हम ले आते हैं, ये हम जरूर ले आते हैं, लेकिन आप अगर उमर खालिद की बात कर रहे हैं, अगर आप उमर खालिद के वक्तव्य की बात कर रहे हैं, मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, बस एक बात कि अगर आप उमर खालिद की बात कर रहे हैं वो तो अभी भी जांच का विषय है कि वो आजादी चाहिए किसके नारे थे, वो उसमें अभी तक जो है दिल्ली पुलिस एक फाइल नहीं कर पाई कि मामला क्या है, उसमें चार्जशीट फाइल नहीं हुई और वो अभी भी जो टेप हैं वो क्या उनके साथ काटछाट की गई थी वो सब चर्चा और विवाद का विषय बना हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पर जो एक सार्थक बहस कर रहे हैं कि क्यों नहीं हम विकास के मुद्दे उठाते और एक स्वच्छ राजनीति की बात करते, कार्यक्रम में एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ, मैं वापस आपके पास लौटता हूँ। जी नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
हेलो
जी, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
शर्मा साहब नमस्कार।
नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं?
जी सर, मैं गांव बोली तहसील सेडवा जिला बाड़ में राजस्थान से बबूताराम जाखड़ बात कर रहा हूँ।
अच्छा जाखड़ साहब, फिर से राजस्थान से आ गए जी, अपनी बात रखें आप। बात रखने से पहले ही चले गए जी। एक और श्रोता को हम यहाँ पर टेलीफोन लाइन पे ले रहे हैं। जी नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
जी बेगूसराय।
बेगूसराय बिहार से नाम है। जी नाम बताएं।
जी, प्रेम।
प्रेम जी, आप बात रखें अपनी।
जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम स्कूल और कॉलेज जो हैं वो शिक्षा का मंदिर है, और जो शिक्षा लेते हैं वही किसी के विचार को वो ग्रहण कर सकते हैं। अभी विश्व में सिर्फ वामपंथी विचार ही ऐसी विचार है जो इस समाज की भलाई की बात सोचता है, और जो शिक्षित लोग हैं वो वामपंथ की ओर ही जाएंगे, जो अशिक्षित लोग हैं वो AVP का JNU में जो नेता है वो 17 बार से वो उसी में 17 साल से वही कॉलेज में पढ़े हुए हैं और वो नेतागिरी करते हैं। दूसरी बात आप देखें, जो ये स्कूल को छावनी के रूप में बदल रहे हैं, वहाँ जम्मू कश्मीर में स्कूल को तोड़ा गया, भारत सरकार कहा, आपने कहा था, हम आपको प्रतिदिन सुनते हैं BBC
जी,
आपने कहा था जो वो आतंकवादी कहते हैं भारत सरकार तोड़ते हैं, वहाँ के सेना तोड़ते हैं, और ये कहते हैं आतंकवादी तोड़ते हैं, आखिर में कौन तोड़ता है, इसका कौन निर्णय करेगा? दूसरी बात, 1962 की बात उन्होंने महापात्रा जी उठाए, 1962 ईस्वी में पंडित सुंदरलाल का उन्होंने लेख पढ़ा ही नहीं, वो तो सिर्फ पूंजीपति चाकरी किए, इसलिए वो ऐसी बात बोले। 62 के बारे में उन्होंने कहा, जवाहरलाल कहे थे, जब उनको लोहिया जी ने पूछा आप विदेश जा रहे हैं, वहां चीन के सीमा पर, भारत के सीमा पर चीन का सैनिक जमा है, तो उन्होंने कहा था मैंने कह दिया है टेंट समियाना उखाड़ करके फेंक देने के लिए।
जी,
तो
जी,
फिर वो कैसे कहते हैं तो भारत की लड़ाई में हम देशभक्त, वो देशभक्त हैं जो पूंजीपति की चाकरी करते हैं, उसके टुकड़ा पर पलते हैं, पैसा खर्च करके वोट ले लेते हैं, तो वो कहते हैं वो जीत जाते हैं, तो वो बहुत बड़े लोग हो गए।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपकी पूरी राय सुनी। और ये सीधी सीधी जो बात है, संदीप महापात्रा जी, आपने हमारे श्रोता की बात को सुना और इन्होंने ये कहा कि जो शिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो वामपंथ की तरफ झुकेंगे ही झुकेंगे, और बाकी बातें भी आपने सुनी।
जी,
कुछ कहना चाहेंगे?
जी जरूर कहूंगा, आज के समय में वामपंथ एक ऐसी विचारधारा है जो विलुप्त प्राय है, और आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाएं, केवल दिल्ली को छोड़ के बाकी जगह में भी इनका जहां तक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।
वैसे एक एक बात लोग ये भी कहते हैं कि जो छात्र अपनी जवानी के दिनों में वामपंथी ना हुआ वो छात्र ही क्या।
हाँ, और उसके बाद अगर वो अपने बुढ़ापे तक भी अगर वामपंथी हुआ तो उसके मस्तिष्क में कुछ विकृतियां हैं, ये भी जरूर कहते हैं।
नहीं, खैर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ।
नहीं, लोग कहते हैं, जैसे आपने कहा कि वो उस बात से मैं भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन इस बात से आप अगर सहमत नहीं तो अलग बात है, लेकिन ये भी बात है। लेकिन जहां तक वामपंथ एक विचारधारा की हम अगर बात करेंगे, अगर विश्व में आप देखेंगे कहीं भी वामपंथ विचारधारा के नाते जब भी उनके परचम में भी था तब भी वो लोग कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसका उदाहरण हमारे सामने सोवियत रूस का विघटन होना है, ईस्ट यूरोप का विघटन होना है, और बहुत सारे इस तरह के बाकी रहे हैं, वो चाहे क्यूबा ही क्यों ना हो। लेकिन ये कहना कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वामपंथ से जुड़ना चाहते हैं, वो कतई आज के समय में वो सही नहीं है। एक समय में हो सकता है जब कोई और विचारधारा लोगों के पास नहीं पहुंच सकती थी, हो सकता है ये उनके बात हो सकता है उस समय कुछ हद तक जायज हो, लेकिन आज के समय में अगर आप विद्यार्थियों में संगठन देखेंगे तो विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है जिसमें 30 लाख विद्यार्थी काम करते हैं, कार्यकर्ता हैं। और जहां तक उनकी बात यह है कि 17 साल से शायद उन्होंने कुछ कहा कि जेएनयू में हम लोग, मैं या मेरे बारे में कुछ कहा गया, मैं उनको ये बता दूं कि आज के समय में मैं वकालत करता हूं, ऐसा नहीं है कि वामपंथी के जैसे मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, ये उनको मैं क्लैरिफाई कर देना
जी,
चाहता
हूं। जी, वापस चल रहे हैं हम अतुल कुमार अंजान जी। अतुल कुमार अंजान साहब
जी,
जी आप बहुत कुछ कहना चाहते थे बीच में।
मैं मोहनलाल जी एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी के तख्ते पर चढ़ गए, 19 साल की उम्र से मुकदमा चलाते रहे, सैंडर्स की हत्या की, देश के अंदर उन्होंने प्रताप अखबार में
ये सब तो राष्ट्रशंकर विद्यार्थी
के यहाँ लिख डाला,
ये सब राष्ट्रवादियों के चेहरे हैं।
नहीं नहीं, ये राष्ट्रवादी नहीं थे, ये क्या कहा भगत सिंह ने, आदमी के द्वारा आदमी का शोषण समाप्त न हो तो क्या, इनकलाब जिंदाबाद उसने कहा। आखिरी वक्त मरते वक्त क्या कहा, जेलर ने पूछा क्या चाहते हैं, कहले मैं क्रांतिकारी लेनिन को पढ़ रहा हूँ, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, लेनिन के वैज्ञानिक समाजवाद को पढ़ रहा हूँ, वही एक रास्ता है भारत का। मैं पूछ रहा हूँ, 300 लोग कामागाटा मारू के लेकर के जहाज लेकर अमेरिका से हथियार लेकर भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने आए, 200 लोग अंग्रेजों ने मार डाले, बाकी सब जेलों में चले गए, बाबा सोहन सिंह भखना, बाबा पृथ्वी सिंह आजाद, बाबा सोहन सिंह जोश, ये सब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। आजादी के बाद 48 में जो लोग सेलुलर जेल से छूट करके आए 800 लोग, उसमें 450 लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर बने, एक भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और संघ में नहीं गया, क्या वो राष्ट्रवादी नहीं थे क्या। मैं ये सवाल पूछा और पूछ रहा हूँ कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात बहुत करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने क्या कहा था जब जौनपुर में बाई इलेक्शन लड़ रहे थे कि मेरे नाम के आगे पंडित मत लगाओ, मेरे नाम के बाद में उपाध्याय मत लगाओ। आज देश भर में ये राष्ट्रवादी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, और
तो,
पंडित दीनदयाल उपाध्याय
ऐसा ऐसा क्यों है,
ये सब जो छद्म लोग हैं, ये जो छद्म लोग, मोहनलाल जी एक मिनट कहना, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या, जब 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, उस समय 24 साल के अडवाणी जी आरएसएस के प्रचारक थे, राष्ट्रवादी थे, तो क्यों नहीं आजादी की लड़ाई में जेल गए, क्यों नहीं गोलवलकर जेल में गए, क्यों नहीं शेषाद्री जेल में गए, क्यों नहीं दत्तात्रेय लोग गए, वो तमाम लोग क्यों नहीं गए, ये सवाल है। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ, आजादी की लड़ाई कोई 5 साल छोड़िए, आजन्म कारावास छोड़िए, 2 साल भी जेल में गया हुआ आदमी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है क्या, आरएसएस का सदस्य है क्या? राष्ट्रवाद की परिभाषा कोई न करे।
1977 में, 1977 में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी का जब हनन हुआ तो आरएसएस के बहुत सारे नेता और भारतीय जनता पार्टी के आज जो वरिष्ठ नेता हैं बहुत सारे लोग जेल में गए और उन्होंने देश के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं। बात ये है कि
यूनिवर्सिटी लड़ाई नहीं लड़ी मोहनलाल जी,
आज जिस पर हम बहस कर रहे हैं, हम आजादी की तो बहस नहीं कर रहे, हम आज ये बहस कर रहे हैं, हम आज जो बहस कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन ये मारपीट करना, हिंसा करना, हम मूड तोड़ देंगे, ये कब से होने लगा,
ये गलत है, यह गलत। मैंने कहा ना कि मैं जब अध्यक्ष था, मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बार नहीं कई बार बुलाया, और मेरे को बता रहे हैं आपको के एस हेगड़े साहब लोकसभा के स्पीकर थे, वो बीजेपी के आदमी थे, जनसंघ के आदमी थे, मैंने उनको बुलाकर छात्र संघ का उद्घाटन उनसे साथ कराया था। कैप्टन राम सिंह को बुलाया था जो आजाद हिंद फौज के वो थे, वो सारे 400 क्रांतिकारी इकट्ठे। विश्वविद्यालयों में चर्चा हो
और चर्चा के लिए
चेतना हो,
वैचारिक चेतना हो, वैचारिक बहस के लिए विश्वविद्यालय होने चाहिए, और इसका आप समर्थन कर रहे हैं।
बिल्कुल।
मैं कार्यक्रम में श्रोता को शामिल कर रहा हूँ, उसके बाद संदीप महापात्रा के पास जाएंगे। जी नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
जी मैं राहुल कुमार झा बेतिया बिहार से बोल रहा हूँ। मोहन जी नमस्ते।
जी नमस्कार राहुल जी।
जी सर मेरा कहना है कि इन विश्वविद्यालयों में एक लंबे समय से वामपंथी गुटों का बोलबाला रहा है। अभी कुछ सालों से दक्षिणपंथी विचारधारा वाले गुटों का को सफलता मिलना शुरू हुई है, जिसके कारण सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखने लगा है। छात्र संगठनों से जुड़े राजनीति का कुछ नया अध्याय देखने को मिल रहा है, जो शायद वामपंथी विचारधारा से बनी आ रही एक धारणाओं से अलग है, और यही विवाद का मुख्य मुद्दा है।
जी संदीप, हाँ हाँ हाँ, कुछ और कह रहे हैं?
मेरा कहने का मतलब है कि ये जो अभी अतुल अंजान जी उसी समय से वामपंथ का कर रहे हैं गुणगान, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर वामपंथ इतना ही बड़ा विचारधारा है तो क्यों सिमटते जा रहे हैं पूरे विश्व में?
ये सवाल हम पूछ लेंगे, ये अभी हम पूछ लेंगे, लेकिन पहले संदीप महापात्रा के लिए एक सवाल है। संदीप महापात्रा जी, ये जो हमारे श्रोता है ये पूछ रहे हैं कि भाई वाम पंथ फिर यूनिवर्सिटी में क्यों पनपता है, अगर उसकी विचारधारा से लोग प्रभावित हो रहे हैं, छात्र प्रभावित हो रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है और क्यों छात्र उसकी तरफ झुक जाते हैं? निश्चित तौर पर आकर्षक तो है ना?
नहीं नहीं, देखिए किसी छात्र को किसी विचारधारा में जाने के दो कारण होता है, या तो उस तरह की विचारधारा में वो पले बड़े हों, विश्वविद्यालय में जब वो आते हैं हो सकता है कि जो ग्रेजुएट जहाँ से करके आए हों वहाँ पे हो। दूसरा जो मुख्य कारण है और जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में देखा जाता है कि आप अगर उस यूनिवर्सिटी में उस विचारधारा को समर्थन करते हैं तो हो सकता है आपके करियर में उसका फायदा मिले, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और आज के समय में ये परिवर्तित हो रहा है, और जब परिवर्तित होके वामपंथी,
मतलब इसका ये कि अगर दक्षिणपंथी विचारधारा है तो आपको करियर में फायदा मिलेगा आज की तारीख में?
नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज की समय, आपकी बात समझ रहा हूँ आपको कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन आजकल आज के समय में उसका एक विरोधाभास हो रहा है। और जहां तक जो शब्द का चयन है दक्षिणपंथी, मैं उससे सहमत नहीं हूं, मैं कहूंगा राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति लोगों के रुझान है, और ये लगता है इसीलिए क्योंकि वामपंथी जो विचारधारा है उनको लगता है कि उनके सामने एक चैलेंज की तरह राष्ट्रवादी विचारधारा खड़ी हुई है, तो इस तरह के हरकतें करने में।
तो आपको इतने साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को आप पहले अध्यक्ष थे, पहले और आखिरी, तो इतनी घुसपैठ करने में इतना टाइम कैसे लगा, और आप भी सिर्फ एक वोट से जीते थे?
जी वही मैं कह रहा हूँ, उसमें घुसपैठ देखिए हम लोग यहाँ पे
बहुत टाइम लगा।
जी जी, वहाँ यहाँ पे अगर आप जेएनयू की बात कर रहे हैं तो वहाँ जिस तरह के रिक्रूटमेंट हुए, जिस तरह के फैकल्टीज यहाँ पे है और आज भी चलता है, अगर 100 में से मैं कहूंगा 95 लोग अभी भी वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है।
जी एक श्रोता को शामिल कर रहा हूँ, समय कम है, एक श्रोता को और शामिल करना चाहता हूँ। जी नाम बताए, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
नमस्कार,
कहाँ से बोल रहे हैं?
मैं ओम नमः शिवाय रेडियो श्रोता संघ मुकाम पोस्ट गोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से।
अरे गुरुजी नाम तो बता दीजिए।
सगोरिया स्कूल घाटी से बसंतीलाल।
अच्छा बसंतीलाल जी, अपनी बात रखें।
जैसे वामपंथ होता है तो ये धारा अक्सर विद्यार्थी के मन में क्यों आ जाती है कि वामपंथी हो जाते हैं, और जैसे डर सा क्यों पैदा होता है, जैसे इनको खत्म करना चाहिए सर।
किनको?
वामपंथ को।
अच्छा वामपंथ को खत्म करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आखिरी टिप्पणी के लिए संदीप जी आपके पास आ रहा हूँ, उसके बाद आखिरी टिप्पणी मैं अतुल जी से लूंगा।
जी।
सर ये बताइए कि अभी अतुल जी से हमने बात की और उन्होंने कहा कि ये जो मारपीट है, घुसेबाजी, लातबाजी, ये तो ठीक नहीं है ना?
नहीं, उसका तो कतई हम समर्थन नहीं करते हैं। मैंने कहा ना शुरू में ही,
तो स्ट्रिक्टली आदेश क्यों नहीं दिए जाते हैं कि भाई
किसी भी फॉर्म में हो वो उचित नहीं है।
आप वैचारिक बहस कीजिए, मंच पर आइए, चर्चा कीजिए, विचार कीजिए,
लेकिन वो दोनों तरफ से होना चाहिए। देखिए ताली दो हाथ से बजती है, अगर वैचारिक वाद विवाद चल रहा है तब ठीक है, लेकिन उसमें अगर आप कुतर्क ले आएंगे या फिर इस तरह कुछ माहौल पैदा करेंगे या फिर प्रोवोक करेंगे या पहले आप ही हाथ छोड़ देंगे और उसके बाद
तो ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है, हिंसा की जगह नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी, जी,
और मेरे पास कार्यक्रम में अब अतुल कुमार अंजान जी के लिए भी समय नहीं है। कार्यक्रम में हम आपसे यहीं पर विदा ले रहे हैं, और अतुल कुमार अंजान जी बहुत बहुत शुक्रिया। बीबीसी इंडिया बोल में हिस्सा लेने के लिए। सुबह नमस्कार भारत कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी समाचारों के लिए, समाचारों के साथ। तब तक bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। मोहनलाल शर्मा को देवाशीष के साथ विदा दें, नमस्कार।